ओम शांति। अभी हम सबके सामने आदरणीय राजयोगिनी गोपी दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी करतल ध्वनि से दीदी जी का स्वागत करते हैं और साथ साथ बहनों को भी रिक्वेस्ट है कि उनका पुष्प गुच्छ और बैजेस के द्वारा स्वागत करें। आदरणीय भाई साहब भी आदरणीय दीदी का स्वागत कर रहे हैं, शॉल उड़ाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। दीदी जी बहुत दूर से आए हैं, आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। आप बचपन से ही इस ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और लगभग 40 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। बेसिकली आप यूके से हैं, लेकिन आपका जो पली बड़ी है आप अफ्रीका में, उसके बाद आपकी एजुकेशन जो है वो यूके एंड इंडिया में भी हुआ है। आप एक कुशल वक्ता, अनुभवी राजयोगा शिक्षिका हैं, इंटरनेशनल स्पीकर हैं। इसके साथ साथ आपका पूरा ईश्वरीय जीवन जो है ईश्वरीय सेवाओं के प्रति समर्पित है। आप पूर्व की आध्यात्मिक ज्ञान और पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति का समन्वय है। इंटरनेशनल लीडरशिप प्रिंसिपल्स की खोज व उसको आगे बढ़ाने में आपकी विशेष रुचि है। आपने अनेक देशों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार प्रचार में अपना बहुत योगदान दिया है और आपसी मेल मिलाप, सामंजस्य व सद्भाव का समन्वय कैसे हो, इस क्षेत्र में आपने बहुत कार्य किया हुआ है। आप प्योरिटी, रॉयल्टी, सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी की प्रतिमूर्ति हैं। ईश्वर ने आपको अनेक विशेषताओं से सजाया है। अभी आप दीदी से सुनेंगे आज का जो विषय है, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग। ओम शांति।
ओम शांति। मैं चाहूंगी कि हम तीन बारी अच्छी तरह से ओम की ध्वनि करें, तो आप ज्वाइन करना मेरे साथ। ओ हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ओम की ध्वनि से होती है। मैं कौन हूं, इसका जवाब शायद आप एक सेकंड में दे सकते हैं, लेकिन मैं कौन हूं का प्रश्न पूरा एक जीवन का रियलाइजेशन होता है। एक्चुअली हमारा निमाशाम का एक नियम है यहाँ पे, जो हम 7 से 7:30 बजे तक योग अभ्यास करते हैं, तो मैं चाहूंगी 8 बजे तक तो बैठना है, लेकिन थोड़ा 5-7-8 मिनट अच्छी तरह से हम योग में बैठे, ठीक है सभी के लिए? क्योंकि ये जो समय है इसमें शक्ति है और ब्लेसिंग्स है, तो हम इस समय पे जब योग का अभ्यास करते हैं तो आत्मा को डबल शक्ति मिलती है। तो मैं चाहूंगी कि जहां पे भी आप बैठे हो थोड़ा अलर्ट होकर के बैठो, पूरी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, और आप बाबा से दृष्टि ले सकते हैं पीछे। और थोड़े समय के लिए चलो हम अंदर की एक यात्रा शुरू करते हैं। थोड़ा गहरा श्वास लो और फिर श्वास को छोड़ो। और जहां पे भी टेंशन है बॉडी में उसका हल्का कर दो। श्वास से पूरा टेंशन को रिलीज कर दो। अभी चलो हम अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। अपना ध्यान बाहर से अंदर कर लो। ये शरीर एक वस्त्र है, एक मंदिर है और मंदिर के कई दरवाजे हैं, कर्मेंद्रियों के दरवाजे, आंख के दरवाजे, कान के दरवाजे, मुख का दरवाजा। अभी ये समय आया है जिसमें हमको एकांत में बैठना है, तो धीरे धीरे एक एक कर्मेंद्रियों का दरवाजा, मंदिर का दरवाजा बंद कर दो। बाहर की दुनिया से डिटैच होकर के अपना ध्यान अंदर के ओर लेके चलो। अंतर्मुखी हो जाओ। और इस मंदिर में, मंदिर के हार्ट में एक जगती हुई ज्योत है। इस शरीर को शक्ति देने वाली एक चैतन्य आत्मा है। अपना पूरा ध्यान भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कर दो। और मन के अंदर तीन बारी धीरे धीरे ये संकल्प दोहराओ, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। मेरा स्वधर्म है। मैं एक शांत चित्त आत्मा। अपनी शांति की गहराई में चले जाओ। ये जगती हुई ज्योत, एक शांत चित्त, चैतन्य आत्मा, और ब्रुकटी के बीच में अपनी साक्षी अवस्था को प्राप्त करो, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन जाओ। मैं अंदर बैठी हूं शांति की दुनिया में, और बाहर की दुनिया बाहर है। और कर्मेंद्रिया बिल्कुल शीतल बन जाती है। मैं अपनी शांति की डेप्थ में खो जाती हूं। और इस शांति में मेरी आंतरिक खुशी है, इस साइलेंस में परमात्मा का ध्यान कर सकती है। दुनिया की बातें बहुत हैं, लेकिन मैं आत्मा, परमात्मा की संतान हूं। मेरी सुप्रीम बैटरी साइलेंस में मुझ आत्मा को माता के रूप में, पिता के रूप में गोद में ले लेती है। थोड़े समय के लिए जो भी लेबल्स, टाइटल्स, रोल्स हैं, उनको भूल जाओ। मैं आत्मा, परमात्मा का गोद ले रही हूं। गोद ले रही हूं, बिल्कुल अंदर से परमात्मा की स्मृति में अपने आप को बच्चा समझ के बेफिकर बन जाओ। ऊपर वाला बैठा है, मेरा भाग्य उसके हाथों में है। बिल्कुल अपने आप को बेफिकर बना दो। मैं जो हूं, जैसी हूं, परमात्मा की संतान हूं। मैं जो हूं, जैसी हूं, परमात्मा की संतान हूं। और ईश्वरीय स्नेह प्राप्त करके छोटा बच्चा बन जाती हूं। बिल्कुल बेफिक्र, और यही शांति में एक अंदर से सुख प्राप्त होता है। अति इंद्रिय सुख, भल शरीर कैसा भी हो, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा की हूं। अभी इसी स्मृति में रहना, आंखें खोलो और हम आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। ओम शांति। सभी ठीक है? अच्छा लगा? ये जो शाम के समय का जो मेडिटेशन का अभ्यास है, बहुत मीठा अभ्यास है। भक्ति में तो हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त सवेरे का समय, जो हम यहां पे अमृत वेले का समय कहते हैं, उसके बराबर में ये शाम का समय है। तो आप जितना शाम को 20-30 मिनट निकाल के ये योग अभ्यास करेंगे ना, तो अपना जीवन निर्विघ्न रहेगा। क्योंकि योग बल जब जमा होता है ना, तभी शक्ति होती है विघ्नों से पार जाने के लिए। आपके पास दो ऑप्शन है, विघ्नों का सामना करके माथा मारो, या विघ्नों के ऊपर उड़ के चले जाओ। और जितना हम परमात्मा के ध्यान की गहराई में जाते हैं, तो आपको अंदर से ये फीलिंग आएंगी कि मैं सब प्रॉब्लम से छूट रही हूं, मुक्त हो रही हूं, अंदर से फ्रीडम की महसूसता आ रही है। और वही फ्रीडम आपको उड़ती कला में लेके चलेंगी। हमारी हैप्पीनेस आधार के ऊपर हैप्पीनेस नहीं है, हमारे पास एक अनादि अविनाशी संबंध है परमात्मा के साथ। जन्म जन्मांतर के लिए इस परमात्मा ने हमारा बैकबोन बन के रहा है, पालना की है, अभी इसका सुख लेना है। और जितना हम मेडिटेशन में परमात्मा से सुख लेंगे ना, तो जीवन में हमारी हैप्पीनेस ना कोई व्यक्ति या चीज या सर्कमस्टांस या मन की इच्छाएं के या साधनों के आधार से हो सकती है। साधन है या नहीं है, आई एम ओके। व्यक्ति है या नहीं है, आई एम ओके। सर्कमस्टांस ठीक है नहीं है, आई एम स्टिल ओके। ऐसी स्थिति बनानी है और आप देखेंगे आपके जीवन में कि जब भी हम आध्यात्मिक मार्ग शुरू करते हैं किस आधार से, हमारे जीवन में परिवर्तन किस आधार से शुरू होता है। एक तो शायद कुछ घटनाएं, किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम हुई या कुछ सिचुएशन आया, लेकिन उसमें सूक्ष्म रूप में विवेक आपका काम करता है। विवेक जागता है, पूछता है अपने आप को, मैं कहां, यहां कैसे पहुंची, मुझे अभी क्या करना है मेरे लिए जीवन का सुधार करने के लिए। इसको हम कहेंगे लाइफ में इट इज योर मोमेंट ऑफ ट्रूथ। कहते हैं ना, जब मोमेंट ऑफ ट्रूथ आता है तब जीवन की परिवर्तन की घड़ी आ गई। तो हैप्पीनेस ट्रूथ के साथ बहुत जुड़ी हुई है। सिंधी में तो कहते हैं ना, सत बितो नच। जिसके जीवन में सत्यता है वो सदा खुशी में नाचता रहेगा अंदर से। तो एक है हैप्पीनेस विथ सेल्फ, खुद के साथ खुश रहना। दूसरा है संबंध संपर्क में खुश रहना। और तीसरा है कामकाज, जो भी हमारे जीवन में रोल है, जो भी हमको पार्ट बजाना है, उससे खुश रहना। और जब ये तीन प्रकार की खुशी है ना, तो आपकी जीवन एक आर्ट बन जाती है। लेकिन फर्स्ट लेवल है खुद, खुद के साथ खुश रहना। इसके लिए चाहिए आपको विवेक को एक बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने विवेक के आधार से जीता है ना, वो सदा, उसका मन कभी खाता नहीं है, कभी नहीं खाता है। जैसे अमन बिल्कुल अंदर से फ्रीडम महसूस करता है। जो व्यक्ति बंधन महसूस करता है, पहला बंधन यहां से शुरू होता है। कुछ किया, कुछ गलत किया, कुछ गलत सोचा, कुछ गलत बोला, विवेक खाता है, मन खाता है, तो पहला बंधन यहां से शुरू होता है। और जब बंधन में हमारे कर्मों के आधार से हम बंधन में आए, तभी चलो चलती है गाड़ी, चलो ऐसा ही है ना जीवन, कौन खुश है, कौन 100% हैप्पी है। हम अपनी खुद के जीवन को कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं। फर्स्ट थिंग विवेक से काम लेना है। और जब विवेक की जागृति होती है तो लाइफ में हैप्पीनेस के लिए डिसीजन लेना होता है। मुझे मेरी हैप्पीनेस चाहिए, तो जो अंदर से आवाज आ रहा है उसको तो मुझे सुनना चाहिए ना। कई लोग तो वो अंदर का आवाज को दबा देते हैं लोक लाज की वजह से। लोक लाज को फॉलो करते करते पूरा अंदर का आवाज को दबा दिया, इतना दबाया है कि खुद अंदर क्या फीलिंग है, क्या संकल्प है, वो भी महसूस नहीं है। जैसे कंफ्यूजन है अंदर, तो पहले थोड़ा लोक लाज को साइड में रखो। ये दुनियावी संसार में देखो, हम लोग ज्यादातर औरों के रिमार्क्स के आधार से चलते हैं। आप आगे थोड़ा बढ़ेंगे, कोई बोलने वाला बैठा है, आगे क्यों बढ़े हैं? चलो आप पीछे बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे उसको खुश करने के लिए, दूसरा कोई व्यक्ति बोलेंगे आप पीछे क्यों जा रहे हो? आप खड़े हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तीसरा कोई व्यक्ति बोलने वाला है आप खड़े क्यों हो गए हो? आपको बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन क्या आपको अपनी जीवन को औरों के रिमार्क्स के आधार से चलानी है या खुद को रिमार्केबल बनाना है? तो जो जिसने ट्रुथ को एक फ्रेंड बनाया है ना, वो कभी औरों की बातों में जाएगा नहीं। ये हमने दादी जी में बहुत देखा है, खास करके दादी जानकी जी में। मेरी विशेषता क्या है, ईश्वर ने मुझे कौन सा देन दिया है और मैं कहां तक जीवन में उस विशेषता का उपयोग कर रही हूं संसार की सेवा में। इससे ही हमारी संतुष्टता और खुशी होती है। वी हैव टू माइंड आवर ओन बिजनेस फर्स्ट। तो पहला है कि थोड़े समय के लिए, चलो मैं मानती हूं हमारे जीवन बिजी बहुत हो गया है, लेकिन मैं कहूंगी इस बिजीनेस में केयरलेसनेस बहुत है। थोड़ा सा खुद को टाइम दे करके हर एक बात की सेटिंग कर दो आपके जीवन में, सत्यता के आधार से। सत्यता के आधार से जीना माना क्या? इट्स नॉट इनफ हम कहेंगे हम सच बोलते हैं, लेकिन मेरे जीवन के नियम क्या है? मैं अभी आपको पूछूं, क्या आप अपने जीवन के नियम का लिस्ट बना लो? तो आप बना सकते हैं। किस आधार से आप जीवन में डिसीजंस लेते हैं, मोहवश या कुछ नियम के आधार से? तो टू लीड अ ट्रूथफुल लाइफ, एक नियमित जीवन बनानी है। और जो व्यक्ति नियम पे चलता है ना, उसकी लाइफ में सदा ऑर्डर रहती है, ऑटोमेटिक जीवन चलती है। क्योंकि नियम होता है तो डिसीजन पावर भी हाथ में होती है। हमारे डॉक्टर साहब है माउंट में, कई लोग आते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए। डॉक्टर साहब सर्टिफिकेट तो ना, अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सर्टिफिकेट चाहिए? ये मेरा नियम नहीं है, मेरा नियम है सच का नियम। प्रॉब्लम है तो जरूर आपको सहयोग देंगे, बिना प्रॉब्लम से तो हम नहीं दे सकते हैं, दूसरा तरीका ढूंढो। तो हम जितना नियम पे चलेंगे ना, वी आर गारंटीइंग इंटरनल हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। तो ये एक बात है, विवेक से पहले काम लो और धीरे धीरे मेरे लाइफ के नियम, मेरे लाइफ के वैल्यूज क्या है, इसके डेप्थ में जाओ। मैं बहुत सारे विश्व घूमी हूं और बहुत लीडर्स, सोसाइटी के लीडर्स मैंने देखे हैं, लेकिन द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर्स जो खुद को भी ठीक रखते हैं, खुश रखते हैं, औरों को भी खुश रखते हैं, उन्हों के पास एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी है, डिसिप्लिन है। सवेरे उठ करके खुद को कम से कम 40 मिनट तो टाइम देते ही है। अभी हमको साइंस का एविडेंस भी है, साइंस भी सामने कहता है कि पहले पहले दिन की शुरुआत में जो 10-15 मिनट है, उस समय में जो भी आप संकल्प रचेंगे, फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, उस संकल्प और फीलिंग से आपका सारा दिन का मूड बनता है। और आप सभी को पता है कि मूड इतना पावरफुल है। जब सुबह को उठते हैं, फ्रेश होते हैं, मूड अच्छा होता है, तो सारे दिन के प्रॉब्लम्स का असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब सुबह को उठते हैं, फ्लैट बैटरी हो जाती है, और ना खुश, अच्छा मूड नहीं है, तो अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है। तो प्रैक्टिकल लेवल पे फर्स्ट 15-20 मिनट सुबह को उठ करके आप मोबाइल फोन से प्लीज दूर रहो, ये हमारा रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप उस समय अपनी मन को एक जड़ के पास समर्पण कर रहे हैं। सोशल मीडिया में बिल्कुल मन को ट्विटर को दे दिया, फेसबुक को दे दिया, तो थोड़ी समय के लिए ध्यान में बैठो, मन को हल्का करो, खुश करो, फिर आप अपना दिनचर्या बनाओ। ये एक डिसिप्लिन होनी चाहिए और आप देखेंगे सारे दिन में इतनी लाइटनेस की फीलिंग रहेंगी अंदर से। सो दिस इज फाउंडेशन वर्क। आप संसार में ऊंचा कार्य करना चाहते हैं, संबंध में परिवर्तन लाना चाहते हैं कि हमारे संबंध व्यवहार में खुश रहे, लेकिन आपका फाउंडेशन ही कच्चा है तो क्या करेंगे? इच्छा के आधार से आगे बढ़ रहे हो, क्या है? होप, आई होप, आई होप, लेकिन अंदर से कुछ पेट्रोल क्रिएट ही नहीं किया है, एनर्जी फीलिंग्स क्रिएट ही नहीं की है। तो फर्स्ट स्टेप खुद को खुश रखने के लिए, प्रोटेक्ट योर मॉर्निंग टाइम, दिस इज एसेंशियल। फिर अभी बात आती है संबंध संपर्क में। सभी चाहते हैं कि हमारे लाइफ में, हमारे संबंध में खुशी हो, प्रेम की भावना रहे, खुश रहे। लेकिन एक आजकल बहुत बड़ी बीमारी है और वो बीमारी है कि हम औरों को खुश करने में इतना टाइम दे देते हैं कि हमारी खुशी इसमें गायब हो जाती है। हमारी खुशी कंडीशनल बनती है कि ये व्यक्ति खुश रहेगा ना तब मैं खुश रहूंगी, मुझे ये चीज मिलेंगी ना तब मैं खुश रहूंगी, मुझे ये अचीवमेंट मिलेगा तब मैं खुश रहूंगी। खुशी को हमने कंडीशनल बना दिया है और जब वो कंडीशन प्राप्त होता है तभी खुशी प्राप्त होती है। इसीलिए संबंध में कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन इज द बिगेस्ट इलनेस। एक्सपेक्टेशन से ही दुख, दर्द, दुख का लेना देना शुरू होता है। लेकिन मैं अपने आप को एक्सपेक्टेंट, एक्सपेक्टेशन में क्यों रखती हूं? क्योंकि मैंने अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखा है। और मैं आपको बताऊं एक बात कि संबंध व्यवहार में खुशी को स्थायी रखनी है तो आपको एक ही चीज की मास्टरी चाहिए और वो है पेशेंस, पेशेंस एंड मोर पेशेंस। क्योंकि क्या है, हमारा आपस में व्यवहार जो होता है ना स्वभाव के आधार से होता है। और हमारा स्वभाव क्या है? हमारा मेकअप है, हमारे थॉट सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, हमारे ओपिनियंस है, हमारे सोच विचार है, और हम उस आधार से लेन देन करते हैं। और आपका सोच विचार मेरे से मैच नहीं होता है तो मुझे ऐसे तालमेल नहीं लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता है। 90% ऑफ आवर इंटरेक्शन इज नॉट सोल कॉन्शियस, इट्स बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर। मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूं, इसका नेचर मुझे अच्छा लगता है। अभी जो सोल कॉन्शियसनेस की वृत्ति जब हम रखते हैं ना, ये एक शुभ चिंतक की अवस्था है। आप देखो सवेरे उठ करके आपने कितने शुभ चिंतन रचे हैं, जो भी आपके परिवार वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, जो भी आत्माएं आपके संपर्क में हैं, हाउ मेनी गुड विशेस हैव यू जनरेटेड फॉर देम? क्योंकि ये पहुंचता है वाइब्रेशन। और दिन की शुरुआत में ये आप काम करेंगे ना तो आप देखेंगे जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा ना, उसको सूक्ष्म में आपसे प्राप्ति मिली है, गुड विशेष की प्राप्ति मिली है, तो आपके पास खुश होकर के आएगा। हम इन बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं 70% ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। वृत्ति दृष्टि से काम लेना है, वृत्ति से वाइब्रेशंस बहुत दूर पहुंचते हैं। आप किसी के प्रति भी अशुद्ध संकल्प करेंगे, वो भी वाइब्रेशन उस आत्मा को पहुंचेंगी, और फिर वो आत्मा आपके पास आएंगी और ठीक व्यवहार नहीं करेंगी और फिर आपको बुरा लगेगा, अरे वो तो ऐसा ही है, लेकिन आपने बीज देखा नहीं। तो सवेरे के जो समय है उसमें केवल खुद के लिए शुभ चिंतक नहीं बनना है, लेकिन औरों के लिए शुभ चिंतक बनाना है, और पेशेंस से सब कुछ अपना टाइम पर हो जाएगा। हरेक की अपनी परिवर्तन की घड़ी है, आप जितना भी चाहो कि वो बदले, वो अपने टाइम पे ही बदलेगा। तो मैं क्यों फालतू संकल्प गवाऊं कि ये बदले ये बदले ये बदले, अरे खुद को तो परिवर्तन करो पहले। नहीं, मुझे याद है हम हीथरो में बहुत ट्रैवल करते हैं, और हीथरो में आसपास देखते हैं ना, एक बारी बैगेज स्ट्राइक हुआ था, जो बैगेज हैंडलर्स हैं उनका स्ट्राइक हुआ था। तो जैसे हमने लैंड किया, बैगेज कैरोसेल पर पहुंचे, तब अनाउंसमेंट आया कि स्ट्राइक हुआ है, देरी लगेगी। कितनी देरी लगेगी वो तो नहीं बताया हमको। चलो 5 मिनट गए, 10 मिनट गए, लोग तो आराम से इंतजार करते, फिर 20 मिनट, 30 मिनट, तो थोड़ा टेंशन बढ़ गया वातावरण में। और मैं साक्षी होकर के देखा कि देखो सभी इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन किस स्थिति में इंतजार कर रहे हैं। बैगेज आए, बैगेज आए, बैगेज आए, बैगेज कब आएगा, कब आएगा, ये एक्सपेक्टेंट स्टेट में इंतजार कर रहे, खुद को ही दुखी बना रहे। पेशेंस माना क्या, वो बैगेज उस टाइम पे आएगा, ये सिचुएशन मेरे हाथ के बाहर है। पेशेंस माना वेट एंड सी, और इन द मीन टाइम खुद का टाइम सफल करो। मेरा टाइम बहुत अच्छी तरह से सफल हुआ, एक भाई था मेरे बाजू में, मेरे साथ कॉन्वर्सेशन शुरू किया, इतना बढ़िया कॉन्वर्सेशन शुरू किया कि आधा घंटा कहां गया हम दोनों को भी पता नहीं चला। तो छोटी छोटी बातों में हम ये जो खुद को एक्सपेक्टेशन में लेके आते हैं ना, हम खुद को ही दुखी बना देते हैं, खुद की एनर्जी को ही खत्म कर लेते हैं। इसीलिए हमको बहुत समय से मेरा एक मंत्र पक्का है, वेट एंड सी, और अपना टाइम सफल करो इसमें, तो इसमें कल्याण आपको प्राप्त होगा। दूसरा है कि हर एक संबंध में अप्रिशिएशन की बहुत जरूरी है, खुद के साथ औरों के साथ, क्योंकि जीवन में तो चलो तमोप्रधान दुनिया है, कांटों का जंगल है, बहुत कुछ बातें आएंगी, वो तो बातें आने का उसका तो धंधा ही है ये है। लेकिन मेरा धंधा क्या है, कांटों को दोषी बनाना? मेरा धंधा ये है कि मैं पांव कहां रख रही हूं, ये मुझे देखना है। और खास करके मैं देखती हूं अप्रिशिएशन की जो एक गुण है, वो सभी गुणों को प्रत्यक्ष करती है। अप्रिशिएशन दिल को खुला रखती है, अप्रिशिएशन हीलिंग करती है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। हमारी एक कॉन्टेक्ट थी अलास्का में, वो कनाडा के ऊपर एक देश है अलास्का, बिल्कुल एंटार्क्टिका के नीचे। तो एक नर्स थी, और वो इंग्लैंड तो हर 2 साल आती रहती थी, तो हमने उसको 5 साल के बाद देखा। और जब वो आई तो वॉकिंग स्टिक लेके आई थी सेंटर पे, तो हमने इसको पूछा क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे चल रहे हो? तो उसने हमको कहानी बताई कि एक दिन वो घर के बाहर निकल रही थी, और जैसे गाड़ी के पास पहुंची और चाबी लगाई दरवाजा खोलने के लिए, तो पीछे से कोई आया था चाकू लेकर के, उसको 7 बारी यहां चाकू लगाया। टोटल उसी समय फेंट हो गई। फेंट हो गई तो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में जब भान आया तो पूरा पैरालाइज थी यहां से नीचे तक। और वो नर्स थी, एथलीट भी थी, बहुत फिट थी। तो आप सोचो, 1 मिनट डायनामिक एक्टिव इंडिविजुअल, नेक्स्ट मिनट कंप्लीट पैरालिसिस, नेक डाउन। तो पहले पहले तो शॉक लगा, ये क्या हुआ। शॉक के बाद थोड़ा थोड़ा अंदर से गुस्सा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या भगवान मेरी बातें सुनता नहीं, क्या ऐसे घटना, क्या ऐसा हुआ मेरे साथ। ट्रीटमेंट तो शुरू किया, डॉक्टर्स को भी संकोच था कि ये शायद पैदल कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, हमको कोई गारंटी नहीं है। फिर काउंसलिंग शुरू किया, और जब ही उस बहन ने बम को बताया कि 2 बातें ने इसको बहुत मदद किया। एक है, जब वो काउंसलर आया था तो काउंसलिंग में वो खुद मेडिटेटर था काउंसलर, तो उसने इसको बताया कि देखो, आप अपने मन को शांत करके एक व्यक्ति को आप अपने मन में बुला लो जिसके प्रेजेंस से आपको सेफ्टी महसूस होती है, कोई भी वो व्यक्ति हो। तो इस बहन ने ब्रह्मा बाबा को आह्वान किया, क्योंकि वो तो बहुत समय से बीके थी और उसको ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार था। तो उसने ब्रह्मा बाबा को मन में आह्वान किया। फिर उस काउंसलर ने बोला, अभी ब्रह्मा बाबा का हाथ लेकर के आप अभी उस सीन पे वापस जाओ मन में। तो पहली दफा तो हो ही नहीं पा रहा था, इतना अंदर से जैसे पूरा शरीर रिएक्शन हो रहा था। दोबारा ट्राई किया, तीसरी बारी ट्राई किया, चौथी बारी ट्राई किया, फिर धीरे धीरे डर कम होता रहा और फिर खुद बाबा के हाथ लेकर के वापस उस सीन पे जा सकती थी बिना इमोशन से। और जब वो इमोशन खत्म हुआ, डर खत्म हुआ उस सीन का, तब उसकी फिजियोथेरेपी काम करने लगी, उसके बॉडी के हाथ पांव शुरू होने लगे फिजियोथेरेपी में, 1-2 कदम बढ़ी आगे। लेकिन दैट वॉज नॉट इनफ। उसकी घटना से सुन के वहां का जो अमेरिकन इंडियंस का जो ट्राइब होता है, एक लोकल चीफ आया था, तो वो चीफ इसको हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया था। उसने केवल एक होमवर्क दिया, एक नोटबुक दे दिया, पेन दे दिया, कहते हैं हर रोज शाम को सोने से पहले 10 चीजों का अप्रिशिएशन आपको लिखना है, 10 बातें का अप्रिशिएट आपको करना है, और वो आपका होमवर्क है, और मैं हर संडे को आपको मिलने के लिए आऊंगा, आपका नोटबुक पढ़ूंगा। तो पहला दिन जब इसने शुरू किया तो 1-2 चीजें, लेकिन फिर भी कोशिश करके, चलो थोड़ा सा भी किसी ने उसको स्माइल किया वो अप्रिशिएट किया, किसने उसको थोड़ा मदद किया वो भी अप्रिशिएट किया। तो धीरे धीरे उसकी नजर और दृष्टिकोण बिल्कुल छोटी छोटी बातों में आ गई कि मेरी जीवन में सहयोग देने वाले इतने सारे बैठे हैं, मुझे ईश्वर की मदद इतने सारे लोगों से मिल रही है। और जैसे इसने अप्रिशिएशन की प्रैक्टिस शुरू की, Within 3 months, she walked from one end of the room to the other end of the room. और 1 साल में walking stick, आप सोचो, something that was physically impossible, भगवान की मदद से, अपने दृढ़ संकल्प से परिवर्तन हुआ, and the cells of the body respond immediately. क्योंकि आत्मा एक पॉजिटिव एनर्जी है, और जितना हम अपने फीलिंग्स, स्वभाव की बात छोड़ो, अपनी इच्छाएं छोड़ो, ओपिनियन छोड़ो, सोच विचार छोड़ो, अपने भाव को सन बना लो, सन भाव में रहो, गुड फीलिंग्स में रहो। जितना गुड फीलिंग्स में, अप्रिशिएशन में रहेंगे ना, एवरी सेल इन योर बॉडी इज एक्सपेंडिंग ऑल द टाइम। और जब वो एक्सपेंशन, ओपननेस होता है, तो आप ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है, हम यहां बैठ करके इच्छाओं को पकड़ के बैठे हैं, ईश्वर ये फुलफिल कर दो, ये फुलफिल, दरवाजा बंद है, ओपननेस नहीं है। तो इसीलिए अप्रिशिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। और लास्ट में, लाइफ के कारोबार में बैलेंस चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मूला है, बैलेंस ब्रिंग्स ब्लिस। व्हेन यू आर आउट ऑफ बैलेंस, आपका अच्छा काम भी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि जब स्थिति बिगड़ती है तो काम भी बिगड़ता है। और वो कर्म पुण्य के खाते में जमा नहीं होता है। तो आप जब देखते हैं कि आप सेवा में डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसी समय खुद को रोकना चाहिए, चलाओ नहीं। क्योंकि उसी अवस्था में आप चलाएंगे ना, तो और ही स्थिति जैसे खींच करके चला रहे हैं खुद को, और ही थकान, और ही चिड़चिड़ापन, और लोग को आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको किसी से ब्लेसिंग्स मिलेंगी ही नहीं। और फिर अंदर से कहेंगे, इतना मैंने कुछ किया, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई अप्रिशिएट ब्लेसिंग्स देता नहीं है। तो अपनी अवस्था को, मेंटल स्टेट को प्रायोरिटी देनी है। थोड़ा काम डिले करो, लेकिन अवस्था को ठीक करो। दिस इज व्हाट इट मींस टू स्टे इन बैलेंस। कोई चीज को टू मच नहीं करो। हर चीज रुकेंगी आपके लिए, मैं आपको बताऊं, नथिंग इज दैट सुपर अर्जेंट। हम तो सोच करके कुछ बात को अर्जेंट बना देते हैं। तो जितना हम बैलेंस में, खुद को बैलेंस में रखेंगे ना, कर्म और याद की, खुद की याद की स्मृति में, उस बैलेंस से हमको ब्लेसिंग्स मिलती है। और मैं आपको बताऊं, दादी जानकी की ये फॉर्मूला थी। दादी जानकी 104 की उम्र तक रहे, उनकी आयु 104 की उम्र तक। हालांकि आप देखो, दादी जानकी बचपन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे शारीरिक के, न्यूमोनिया था, ब्रोंकाइटिस था, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस था, यहां क्रैक था। बहुत सालों का उनका कफ एक बेस्ट फ्रेंड था। 104 तक शरीर को चलाया, किस आधार से? दादी जानकी का ये फॉर्मूला था, 50% परमात्मा की शक्ति मेडिटेशन द्वारा, 40% सभी की दुआएं, और केवल 10% दवाओं का असर। अभी आपको जीवन, एक सुखदायी जीवन बनानी है, तो ये फॉर्मूला अपनाओ कि अपने जीवन के टाइम टेबल में एटलीस्ट आपको दिन में ईश्वर ध्यान देना पड़ेगा। एटलीस्ट मैक्सिमम मैं कहूंगी, मिनिमम 1 आवर तो देना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट्स में बल दो, लेकिन वो परसेंटेज, हिस्सा तो निकालना पड़ेगा ना, अदरवाइज शक्ति कहां से मिलती है? और फिर औरों की गुड विशेस, ब्लेसिंग्स, जब हम खुद को बैलेंस में रख करके कार्य करते हैं, ना अभिमानवश अपने आप को नाम बाला करने के लिए, जिद करने के लिए, पुश करने के लिए, इससे आपको कुछ दुआएं प्राप्त नहीं होंगी। तो दुआएं हमारे सबसे बड़ी दवा होती है, 40% ये है, और ये बैलेंस के आधार से हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप पे ही दवाएं 10% काम कर लेंगी, छोटी मोटी बातों को सेटल कर देंगे। तो मैं अभी घड़ी को देख करके वाणी को यहां समाप्त करती हूं, और मेरी दिल की शुभ भावना है आप सभी के लिए कि जब यहां से आप वापस जाओ घर, तो एक बिल्कुल एम रख करके कि खुशी मेरी पर्सनल सौगात है, ईश्वर की दी हुई देन है, कैसे भी करके उसको गवाना नहीं है। ओके, थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एक हाथ से दीदी का धन्यवाद करेंगे। हमारे खुशी का आधार दीदी ने जो बताया, सत्यता, सच बिटो तो नच, उसके अलावा जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन, और साथ साथ विवेक को अपना फ्रेंड बनाइए, और वेट एंड सी, धीरज। तो ये कुछ टिप्स हैं, स्पिरिचुअल टिप्स हैं, और वास्तव में स्पिरिचुअलिटी एक तरह से प्रैक्टिकल जीवन जीने की एक कला है, और आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत जीवन में लाभ मिलेगा। तो फिर से दीदी का धन्यवाद करते हैं, बहुत सुंदर क्लास कराई आपने, आप सबको बहुत लाभ मिला होगा।